ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ചാപ്റ്റർ 12 ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 13 and 14. ആജ് ശ്ലോക നമ്പർ 13 और 14 में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही रहस्यमय बात बताने वाले हैं. और ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि अब तक भक्ति योग में हमने क्या क्या सीखा है, कहाँ तक पहुँचने के बाद ये बात सीखनी पड़ेगी जो आज भगवान बता रहे हैं. पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि निराकार और साकार में कौन सिद्ध है, तो भगवान ने जैसे ही शब्द बोलना उच्चारण किया तो पहला वर्ड बोला मैयावेश मनोयिमा, जो अपने मन को मुझ में लगाता है, यानी मेरे साकार रूप में लगाता है और नित्य युक्ता उपासते कंटिन्यूस मेरे साकार रूप की उपासना करता है, और ऐसा जो है वो मेरे नजदीक वो ज्यादा बेहतर है. लेकिन जो निराकार की भक्ति करते हैं और अपने इंद्रियों का संयम करते हैं, वो भी एट लीस्ट मुझे पहुंच जाते हैं, मुझ तक मुझे प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं. आगे भगवान ने पांचवें श्लोक में बताया कि देखो अर्जुन, ये जो रास्ता है ना निराकार वाला, वो बहुत क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा, ये बहुत हार्ड है. लेकिन आगे भगवान ने कहा, क्योंकि वो वाला रास्ता हार्ड है, तो इसलिए 6 and 7 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर देता है और अनन्य योग के साथ जो मेरा ध्यान लगाता है, मुझे उपासना करता है, डायरेक्ट से मेरी पूजा करता है साकार रूप की, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु, मैं उसे फटाफट से मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूँ. 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, इसलिए क्योंकि जो मन लगाते हैं उन्हें मैं जल्दी पार करता हूँ, इसलिए तुम क्या करो, मैय व मन आदत सो मैं बुद्धि निवेश, तो मन को मुझ में लगाओ और अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ. लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो 9वें श्लोक में भगवान ने कहा, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मैं स्थिरम, अगर तुम अपने मन को मुझ में नहीं लगा सकते हो तो क्या करो, योग के विधि विधानों का रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो. और आगे भगवान ने कहा, अगर तुम उन विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकते हो, अभ्यास से असमर्थ हो सी मत कर्म परमम, तो मेरे लिए कार्य करो. और जो भक्त, मतलब अगर आप अपने मन को नहीं लगा सकते, अपनी इंद्रियों को नहीं लगा सकते, तो अपने कर्मों के फलों को लगाओ, यानी कि उन भक्तों का सहयोग करो जो कि अपने मन और बुद्धि और शरीर को मुझ में लगा लिया है, तो उनका सहयोग करो. सहयोग करने से भी क्या होगा, तुम्हारे अंदर शुद्धता प्राप्त हो जाएगी और मुझे प्राप्त कर लोगे. और आगे भगवान ने कहा, अथय तदप्य शक्तों से कर तो मध्योगश्रित सर्व कर्म फल ततः कुरु तेतात्मा, यानी कि अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो, मेरे भक्तों का अनुमोदन भी नहीं कर सकते हो, तो अपने कार्यों को, जितने भी तुम्हारे कार्य हैं, उसके फलों को कोई सोशल वर्क करने में लगाओ, एटलीस्ट कर्मों के फलों को कुछ तो त्याग करो तुम्हारे मन में मेरे, इससे क्या होगा, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा और मेरे लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा. लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण ने 12 नंबर में एक निश्चय निर्णय देते हुए कहा, देखो ये जो मैंने बाकी चीजें बताई है ना, वो जो है वो गंतव्य नहीं है, गंतव्य लक्ष्य तो केवल मेरे प्रेम की प्राप्ति है, और इसके लिए श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासम. अच्छा है, तुम ज्ञान ले लो पहले, अगर मतलब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट से मन नहीं लग रहा है, तो ज्ञानो ज्ञाना ध्यानम विशिष्ट, लेकिन ज्ञान हासिल करना सब कुछ नहीं है, उससे ज्यादा बेहतर है कि तुम मेरा ध्यान लगो और ध्याना कर्म फल त्याग, और ध्यान से भी ज्यादा बेहतर ये है कि सारे कर्मों के फल जो है वो मुझे आप अर्पण कर दो, और त्यागा शांति अनर्थरम, इस तरह से आप शांति को प्राप्त कर लोगे. ये सब करने से क्या होगा, हम किस स्टेज तक पहुंचेंगे, वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये एक सीढ़ी है जिस पर भगवान हमें चढ़ने के लिए बता रहे हैं, कि जिस भी स्टेप पर आप खड़े हो, अगर आपको ये पता है कि टॉप फ्लोर पे किसका घर है, तो आप भले कितना ही सिलो क्यों ना चल रहे हो, कौन से भी स्टेप से आपने स्टार्ट किया हो, भले आप अभी तक पहले फ्लोर पे हो, भले आखिरी फ्लोर पे, भले बीच में किधर भी हो, अगर आप गंतव्य आपको पता है, लक्ष्य आपको पता है कि किधर तक जाना है, तो भले आप सिलो भी चलोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप मंजिल तक पहुंच जाओगे. अब मंजिल ये मिली कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा. देखो ये पढ़ना पर्याप्त नहीं है, ये सब हमें करना है, ये भगवान श्री कृष्ण जो भी बता रहे हैं हमें उन पर फॉलो करना है, तभी तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, सर्वोच्च सिद्धि. हम संसार में कुछ भी हासिल करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए कितना त्याग करते हैं, एक
इस संसार में एक छोटा सा घर खरीदने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जन्म से लेकर कोई अगर स्ट्रगल करना शुरू करता है, पैसे जमा करना शुरू करता है, करते 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 लाखों रुपए चाहिए होते हैं, फिर घर बनाता है और ऐसा घर बनाने के बाद ये भी घर ऐसा मिलता है हमें जिससे एक न एक दिन हमें चार कंधों पर लेकर जाया जाता है। यानी कि परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये घर हम लाइफ टाइम जब तक हमारा ये शरीर की जब तक जीवन है तब तक ही हमें मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, हमें उस घर से निकाल दिया जाएगा। कोई भले किसी ने बनाया हो घर, वो मर जाएगा तो क्या उस घर में रहने दिया जाएगा कि चलो ठीक है इसी ने बनाया ना तो क्या हुआ, भले मर भी गया तो भी इसी घर में भले रहे, नहीं ना, उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो घर है यानी कृष्ण के धाम में जो घर है वो एक परमानेंट घर हम बना, उसके लिए सांसारिक घर के लिए कितनी मेहनत करते हैं, पूरा पूरा जीवन उसकी मेहनत के उसमें मेहनत करते रहते हैं, तब कहीं जाकर एक घर मिलता है और उसमें से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण 15.7 में बताते हैं, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। ये जो मेरा घर है उसमें तुम्हें लाइट बिजली और पानी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ऐसा घर है जहां से तुम्हें कभी भी निकाला नहीं जाएगा। तो ऐसे परमानेंट घर को हासिल करने के लिए क्या हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकेंगे। यही बात आगे भगवान श्री कृष्ण जो आज हमें बता रहे हैं इससे आगे की बात है। देखो यहाँ तक क्या हुआ कि हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया, लेकिन किसी के लिए जब हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उसके बाद एक ख्वाहिश, एक कसक, एक लालसा हमारे हृदय में उसके साथ साथ जन्म लेती है। भले मैं कितना ही कह दूं कि महाप्रभु ने कहा आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टो माम अदर्शनम मर्म हताम करो, तो तुम चाहे मुझे दर्शन ही ना दो, चाहे दर्शन ना देकर मेरा हृदय तोड़ दो, चाहे अपने पैरों से कुचल दो, चाहे तुम मेरे साथ जैसा भी सुलूक करो, मगर मैं तुमसे प्रेम करूंगा वो एक बात है, लेकिन एक हृदय में एक इच्छा, एक प्रेमी के होना स्वाभाविक है। ये इच्छा, उस इच्छा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम भक्ति के विषय में लिखा हुआ है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावृतम अनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम, कि भक्त केवल ये सोचता है कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, उसके अतिरिक्त ज्ञान और कर्म के किसी फल की उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती। ज्ञान और कर्म के फल की आसक्ति की बात नहीं हो रही है, एक दूसरी इच्छा है जो ना ज्ञान हासिल करने की है, ना कर्म की है, ना सांसारिक किसी चीज के हासिल करने की है। प्रेमी के हृदय में एक इच्छा तो स्वाभाविक होती ही है कि उसका प्रेमी भी उससे प्रेम करे। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने प्रेमी के प्रेम को जीत सकूं, तो वो कौन बता सकता है कि वो किस तरह से अपने प्रेमी, मतलब मैं तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लूंगी, अब तक जो 12 श्लोक बताए भगवान श्री कृष्ण ने उन पर फॉलो करके एक भक्त डेफिनेटली कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। और जब कृष्ण प्रेम उसके हृदय में प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय में एक तीव्र इच्छा होती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कृष्ण के हृदय में भी मेरे लिए प्रेम उत्पन्न हो। तो वो वही बता सकता है जो प्रेमी है, यानी कि उसकी ख्वाहिश तो वही बता सकता है ना कि मैं किससे प्रेम करूंगा या मेरा प्रेमी कैसा होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण आज श्लोक नंबर 13 और 14 में यह इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि मुझे कौन प्यारा है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक नंबर 13 और 14, अत्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मत्भक्तः स
सवे प्रिया।
भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अद्वेष्टा, अद्वेष्टा देखो द्वेष का मतलब होता है किसी से हसद रखना, और अद्वेष्टा का मतलब होता है ईर्षा विहीन, यानी जो किसी से हसद नहीं रखता। किससे नहीं रखता? खाली अपने घर घर वालों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से, अपने मोहल्ले वालों से, अपने इलाके वालों से, या अपने शहर वालों से, या अपने मुल्क वालों से नहीं, सर्वभूतानां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, समस्त जीवों के प्रति, चाहे वो मानव हो या चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, किसी से भी हसद नहीं करता। सबका मैत्र, सबका मित्र, सबके साथ मित्री भाव है उसका, और करुणा, उसके हृदय में करुणा है, दया है। एवच निर्ममा, निर्ममा का मतलब होता है कि किसी चीज में उसकी कोई स्वामित्व की भावना नहीं है, किसी के लिए ये नहीं सोचता कि ये मेरा है, किसी में ममता नहीं है, अहंकार नहीं है किसी भी चीज के लिए, मिथ्या अहंकार से रहित। देखो अहंकार भी दो तरह के होते हैं, एक तो प्रभुत्व का अहंकार होता है कि मैं ये हूँ, मेरी ये पोजीशन है, और दूसरा अहंकार जो भक्त के अंदर होता है वो ये होता है कि मैं दास हूँ। हमारा सबसे बड़ा अहंकार यही है कि हमने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का दासत्व स्वीकार किया है। अगर कभी अहंकार करने का दिल हो ना, तो इस बात पर कि मेरा मालिक कितना महान है, मेरा कृष्ण कितना महान है, इस बात पर। लेकिन यहाँ पर बाकी संसार में जो कुछ भी होता है वो मिथ्या अहंकार होता है, यानी कि वो उन चीजों पर अहंकार करते हैं जो उनकी वास्तव में होती नहीं है। आगे कहा सम दुख सुख हक क्षमी, यानी कि वो दुख और सुख को एकदम सम समझता है। सम का मतलब होता है इक्वल, बराबर समझता है, और क्षमी का मतलब होता है क्षमावान, वो क्षमा कर देता है। संतुष्ट सततम योगी, जो योगी होता है मतलब जो कंटिन्यूअस भगवान के भक्ति में रत रहता है, जुड़ा हुआ होता है, वो कंटिन्यूअस संतुष्ट रहता है, और यतात्मा दृढ़ निश्चय, वो आत्म संयमी होता है, आत्मा में स्थित होता है, और उसका जो संकल्प होता है वो एकदम दृढ़ होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होता है। मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान श्री कृष्ण वापिस से श्लोक नंबर 8 की तरह बता रहे हैं, 8 जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था ना, मय्यावेश मनो ये माम। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को आज तीसरी दफा बताया है। श्लोक नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते, यानी जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और कंटिन्यूअस श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 8 में बताया मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने चित्त को मतलब अपने मन को मुझ में स्थिर करो और अपनी बुद्धि को भी मुझ में स्थिर करो। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण आज श्लोक नंबर 14 में बता रहे हैं मय्यर्पित मनोबुद्धि, जो ऐसा करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर शब्द बोल रहे हैं यो मद्भक्त समे प्रिय, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं। कैसे भक्त? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो कि सारे संपूर्ण प्राणियों के साथ द्वेष नहीं करते, मैत्र करुणा एवच, वो सबके दोस्त होते हैं, सबके लिए उनके हृदय में करुणा होती है। निर्ममो, किसी में भी ममता नहीं रखते, यानी दोस्ती तो करते हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं करते, लेकिन किसी में ममता नहीं रहती। निरहंकार, अहंकार का भाव नहीं होता। सम दुख सुख सुख, उसको सुख और दुख दोनों इक्वल लगते हैं। क्षमी, वो क्षमावान होता है। संतुष्ट कंटिन्यूअस सेटिस्फाई रहता है, और हमेशा सततम योगी, हमेशा योग में लगा रहता है। यतात्मा दृढ़ निश्चय, आत्मा में स्थित होते हैं और उनका संकल्प दृढ़ होता है। मय अर्पित मनोबुद्धि, वो अपने मन और बुद्धि को मुझमन अर्पित कर देता है। यो मद भक्त स मे प्रिय, श्रीपा जी कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय ही निश्चय के साथ मुझ में मन लगाता है, मन को बुद्धि को स्थित करके भक्ति में लगाता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं। अब श्री प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत ही सुंदर हमें समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर, पुनः मतलब दोबारा, दोबारा शुद्ध भक्ति पर आकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्टार्ट वहीं से लिया था ना। देखो मैया वेश मनो ये माम, दूसरे श्लोक से स्टार्ट किया था, तो वहां पर भी शुद्ध भक्ति वही बात थी कि मैया अर्पित मनोबुद्धि, मेरे अंदर मन और बुद्धि को लगाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है उसी के लिए श्री प्रभुपाद जी बोल रहे, शुरू में बोला था और बीच में दूसरी चीजें भी निराकार वगैरह भी घुस गई थी, और वो करने के बाद बाद ऐसे ऐसे करके बता, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ध्यानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागात त्यागात शांति अनंतरम, तो ऐसे करने से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी और आप वापस से शुद्ध भक्ति पर पहुंचोगे, यानी कि शुरू से लेकर बीच में गोल घुमा के वापस वहां तक ही भगवान पुनः आए, वापिस वहां पर आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में, किन दोनों श्लोकों में, ये जो दो श्लोक हम पढ़ रहे हैं 13 और 14, श्लोक नंबर 13 और 14 में श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। शुद्ध भक्त किसी, अब देखो संसार में, अब अगर कोई साधारण प्रेमी की भी प्रेम की प्राप्ति करनी होगी ना, तो हमें अपने को बदलना होगा, है ना, हमें उसके लेवल तक पहुंचना होगा कि जो उसे अच्छा लगता है हमें वही कार्य करने पड़ेंगे, जो उसे अच्छा नहीं लगता है हमें उन कार्यों का त्याग करना पड़ेगा। तो आप अब वो सांसारिक प्रेमी तो कभी भी ऐसा होता नहीं, सब कचरा है, हमेशा ऐसा होता है, धोखा मिलता है और आगे जाकर हमें रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है, लेकिन ये कृष्ण है हमारे सामने, तो उनको प्राप्त करने के लिए भी हमें अपने को बदलना पड़ेगा, जैसे हमारे अंदर अवगुण हैं उनको दूर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को वही अच्छे लगते हैं। तो आज श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के गुणों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत, कितनी ही बड़ी कठिनाई उसके ऊपर आ जाए, वो परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि जो कृष्ण है, जो मेरा प्रोटेक्टर है, वो कृष्ण है, और कृष्ण के होते हुए कोई भी परेशानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, वो किसी से हसद नहीं करता, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है, यानी कि दूसरे लोग को तो वैसे ही वो शत्रुता नहीं करता, लेकिन जो उसके साथ शत्रुता करता भी है उसको भी शत्रु नहीं बनता। वह सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ, यानी अगर उसके साथ कोई शत्रुता करता है तो भी वो यही सोचता है कि जाहिर सी बात है मैंने कोई इसके साथ काले करतूत मतलब उनको पता होता है पहले जन्मों में मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो मेरा शत्रु बना हुआ है, लेकिन अब मैं उसके साथ शत्रुता क्यों करूं, मुझे तो किसी के साथ भी भगवान ने जैसे बताया अद्वेष्टा सर्वभूतानां, यानी कि दूसरे लोग जो कि आपसे शत्रुता नहीं करते उनके साथ आप शत्रुता नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपके शत्रु हैं उनसे भी अगर आप ना शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, तभी हम भगवान के प्रेमी बन सकते हैं। अतएव विरोध करने की उपेक्षा कष्ट सहना ज्यादा अच्छा है, यानी कि क्या फायदा, आज फिर हो सकता है कि पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम ना हो, बल्कि आज फर्स्ट टाइम वो मुझसे शत्रुता कर रहा है, तो फिर क्या होगा, इससे शत्रुता करने के एवज या तो हम लोग इससे पहुंच जाएंगे, इससे आगे निकल जाएंगे शत्रुता में, या फिर पीछे रह जाएंगे। अगर आगे निकल गए और ज्यादा उसको कष्ट पहुंचाया तो उसका कष्ट वापस से हमें भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा, और अगर उसने हमें ज्यादा कष्ट पहुंचाया तो फिर क्या होगा, मरने के बाद वापस उसको कष्ट पहुंचाने के लिए हमें आना पड़ेगा। तो इससे बेहतर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अतः विरोध करने से की उपेक्षा सहना बेहतर है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने 13 श्लोक के आखिरी वर्ड लिखा है क्षमी, कि आपके साथ जो भी जैसा कर रहा है, हो सकता है पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार कर रहा है तो भी उसे क्षमा कर दो, अगर नए भी कर रहा है तो भी उसे क्षमा कर दो। तुम अपना समय शत्रुता करने में वेस्ट करने से बेहतर है क्या, उनके कष्ट को बर्दाश्त कर दो, भगवान के ऊपर भरोसा करो, भगवान तो उनकी भी सहायता करते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, तो क्या तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। अगर हम अपना बदला लेना चाहते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद कोई और है नहीं हमारा, हम अगर किधर जगह पे जाएंगे ना, अगर हमारे साथ हमारा भाई और बाप साथ में होंगे ना, तो कोई अगर हमारे साथ कोई छेड़खानी करेगा, मस्ती करेगा, तो हम बेखौफ रहेंगे, क्योंकि पापा और भाइया हैं, वो खुद ही निपट लेंगे। लेकिन खुद अगर आगे आ रहे हैं, इसका मतलब है हमें बाप और भाई पे भरोसा नहीं है। ये तो सांसारिक मिसाल है, लेकिन अगर संसार में भी हमारे साथ कोई शत्रुता कर रहा है, तो हम अब क्यों खुद आगे आ रहे हैं? ओके, ठीक है, वो कर रहा है, कृष्ण बैठा है ना, कृष्ण को हम क्यों अपने से दूर समझते हैं? वो देख रहा है मेरे बच्चे के ऊपर कुछ हो रहा है, तो क्या उसका हृदय नहीं जलेगा? वो खुद आके कुछ ना कुछ करेगा ना। हमें कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 10.14.8 में कहा गया है, तत्तीनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात् मकृतं विपाकम्। अर्थात जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है, तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिला। यानी कि भक्त को जब बहुत ज्यादा तकलीफ मिल रही होती है ना, तब भी वो ये सोचता है कि मैंने तो, मेरे कर्तव्य तो इतने खराब हैं कि इससे कई गुना ज्यादा मुझे तकलीफ मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरा नाथ, मेरा कृष्ण इतना कृपालु है, जिसकी वजह से उसने बहुत सारी मुसीबत को थोड़ा सा करके मेरे ऊपर डाला है, ये तो कृष्ण की कृपा है। भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थिति में भी सदैव शांत रहता है और धीर बना रहता है। फिर उसके ऊपर चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, वो हमेशा शांत रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु रहता है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे, भक्त किसी से शत्रुता नहीं करता है, दूसरों को तो छोड़ो, अपने शत्रुओं के साथ भी नहीं रखता। निर्ममा का अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, यानी कि किसी चीज में ममता नहीं होती है, शारीरिक रिश्तों में या शारीरिक कष्टों में उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। भक्ति तब स्टार्ट होती है जब हमें ये पता चलता है, वास्तव में हम भक्ति तभी स्टार्ट करते हैं जब हमें ये पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्योंकि जब तक इस लेवल तक नहीं पहुंचते ना, फिर वो भक्ति नहीं होती, सौदागरी होती है। फिर हम चाहते भगवान मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम मेरे कष्टों को दूर करो, इसीलिए जाते हैं। लेकिन भक्ति तब स्टार्ट होती है जब हमें ये याद रहता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम कृष्ण के अंश है, और हमारा कार्य केवल कृष्ण की सेवा करना है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, निर्ममा का अर्थ ये है कि भक्ति जो होता है वो शारीरिक कष्टों को प्रदान नहीं देता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतः वह मिथ्या अहंकार का बोध से मुक्त रहता है। यानी कि वो फिर अहंकार किस पे करेगा? सांसारिक सारी चीजों पर अहंकार इसीलिए करते हैं ना, तो हम ये हमारी है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। लेकिन आत्मा अगर अपने आप को समझता है, तो आत्मा का तो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और सुख और दुख में संभाव रहता है। इसलिए अगर सुख भी मिलते हैं, तो सुख के टाइम पर बल्कि भगवान से ये बोलता है कि आपने मुझे इतने सारे सुख दिए, मैं इनके योग्य नहीं था, ये तो आप कृपा कर रहे हो मेरे ऊपर, कितना सब सुख हमें मुझे दे रहे हो। और दुख के टाइम पर भगवान से ये कहता है, ये आपकी कृपा है, मैंने तो इतने गुनाह किए, इतने अपराध किए कि मुझे इससे कई गुना ज्यादा दुख मिलने चाहिए। और दुख और सुख में समान रहकर कृष्ण की भक्ति करता है, वह सहिष्णु होता है, और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। यानी कि जो भगवान उसको दे रहे हैं उसी में संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाई होता है अपनी जिंदगी से। ये नहीं सोचता ये भी मिले, वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है जो कठिनाई से मिले। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, यही बात श्री रूप गोस्वामी उपदेश अमृत के श्लोक नंबर 2 में बताते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमांग्रह जनसंगश्च लोल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। श्लोक को स्वामी बोलते हैं, 6 चीजें ऐसी हैं जिनसे आपकी भक्ति का सर्वनाश हो जाता है। उसमें पहला है अत्याहार, यानी जरूरत से ज्यादा खाना या पैसे जमा करना, और दूसरा है प्रयासश्च, यानी कि भौतिक चीजों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना। तो इसी चीज सेकंड चीज को यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो बहुत कठिनाई से मिलती, यानी भौतिक चीजें ऐसी जो बहुत मुश्किल से मिले उसके लिए अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो फिर कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम, कृष्ण के सेवा करने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए जो कम मेहनत से मिल रहा है ना मेरे भाग्य का, उसी पर संतुष्ट रहते हैं भक्त, अतः वह सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं, एकदम रिलैक्स होते हैं, प्रसन्न होता है उनका चित्त, क्योंकि उन्हें पता है कि जो जिस चीज को प्राप्त करने के लिए उन्हें ये मनुष्य देह मिल रही है वो इस जीवन में प्राप्त करेंगे। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेश पर अटल रहता है। जो गुरु महाराज उन्हें आदेश देते हैं, जो यम और नियम यानी जो चीजें उन्हें करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, उन सारी चीजों को जानता है और वो उन पर पूरी तरह से अटल रहता है, इसलिए उसका चित्त बहुत प्रसन्न होता है। और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, चित्त प्रसन्न होता है, इंद्रियां वश में होती हैं, गुरु महाराज के आदेश का पालन करता है, अतः वह दृढ़ निश्चय वाला होता है, यानी कि उसका इरादा एकदम मजबूत होता है, वह झूठी तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि वह उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकते, यानी कि उसका हृदय इतना पावर वाला हो जाता है कि वो भले कितना ही सुन ले, कितने ही झूठे बहस और मोबाइल से उसके सामने हो जाए, तर्क दिए जाए, लेकिन वो अपने संकल्प में बिल्कुल अटल रहता है, वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं। फिर चाहे उसे कोई निराकारवादी, कोई दूसरे वादी, ये वादी वो वादी आके कुछ भी बता दे कि ये भगवान ये नहीं है, परमात्मा ये है, परमात्मा कण कण में होता है, उसको कितना भी बता दिया जाए लेकिन उसको ये पूरी तरह से अवगत है कि कृष्ण जो है वही मेरे शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसके सामने चाहे कोई भी आ जाए उसे अपने संकल्प से विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फल स्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर में स्थित करने में समर्थ रहता। अब श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ये सारी क्वालिटीज हो जाएंगी तो अपने मन और चित्त को पूर्णतया अपनी बुद्धि को परमेश्वर में स्थित करने में समर्थ हो जाएगा। तो उसका मन और बुद्धि परमेश्वर में यानी भगवान श्री कृष्ण में लग जाएंगे, और जब लग जाएंगे तो भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हर किसी के लिए ये स्टेज हासिल करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थिर रहता है। अब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि इनको अलग अलग ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं उनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अब कहाँ से हर किसी के लिए हमारे हृदय में प्रेम और करुणा उत्पन्न होगा, कहाँ से ये सब सुख और दुख को समान समझे, ये सब कैसे होगा, कितना मुश्किल है। एक तो हमारा हृदय इतना अपवित्र है, बुद्धि इतनी अपवित्र है, वातावरण इतना दूषित है कि सब कर नहीं सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही सरल लफ्जों में कह रहे हैं, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थिर रहता है। लेकिन भक्त जो भक्ति के विधि विधान करता पालन करता है, यानी जो गुरु महाराज के आदेश हैं कि भाई आपको चार नियमों का पालन करना है, पांच अंग जो भक्ति के चैतन्य महाप्रभु ने बताया, भक्तों का संग करना, विग्रह सेवा करना, साधु पुरुषों का के साथ रहना और तीर्थ स्थानों में जाना, प्लस भगवान के नाम का कीर्तन करना और भागवतम को श्रवण करना, ये विधि विधानों का जब भक्त पालन करता है और नाम अपराध से बचता है, जितने भी 10 नाम अपराध हैं कि भक्तों की निंदा करना और दूसरे देवी देवताओं का भगवान के बराबर ना समझना, गुरु महाराज की अवज्ञा ना करना और शास्त्रों के नियमों का पालन करना, भगवान के नाम का अर्थवाद करना, इन सब चीजों से जब भक्त बचता है तो ये सारे कार्य जो हैं भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए वो उस अवस्था में डायरेक्ट से पहुंच जाता है। जिस अवस्था, कौन सी अवस्था, जिसकी भगवान अभी बात कर रहे हैं, यो मत भक्त समय प्रिय, कि वैसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, यानी कि हमें भगवान को प्यार करना है, विधि विधानों का पालन करना है, उससे हमारे हृदय में तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा, लेकिन साथ ही साथ यही कार्यों के जरिए कृष्ण के हृदय में भी हमारे लिए प्रेम उत्पन्न होता जाएगा। देखो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते उसी वो भगवान को प्रिय नहीं होगा क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि यो मत भक्त सामिप्य, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न होते हैं। किसी के दिल में प्रेम उत्पन्न करने की का एक ही तरीका है कि उसे प्रसन्न करो, और कृष्ण तब प्रसन्न होते हैं जब हम गुरु महाराज के आदेश अनुसार हम अपना जप अच्छे तरीके से करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और सबको सुनाते हैं, सबको सिखाते हैं, तो भगवान जाहिर सी बात है हमसे प्रेम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।